वृंदावनामि पते जय सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारद गोपीश्वर भज विलास दिवंग पद्मे प्रेम प्रियच्छिन्न पाहि वैष्णव मतानुसार शिव चतुर्दशी बहुत से लोग कल भी शिव चतुर्दशी पालन किए आज के कहीं भीड़ अच्छे वहाँ पर भीड़ है आज और कल भी थी आज भी जितने रंगेश्वर मंदिर भूतेश्वर मंदिर गोपीश्वर महादेव समस्त मंदिरों में आज लोग सब दर्शन करने के लिए पूजन करने के लिए गए हैं। शंकर जी का लिंग से आविर्भाव का दिन माना जाता है शिव चतुर्दशी को। इसलिए सभी लोग उनकी आज के दिन में विशेष रूप से उपासना करते हैं। लिखता ही रह जाएगा तो क्या समझे। पहले पहले इस चीज को समझना चाहिए कि मनुष्य की बुद्धि स्वाभाविक नहीं है। मतलब क्या
है? मतलब नैमित्तिक पे हमारे नैमित्तिक के द्वारा ही
वो किसी पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म के संस्कार से वो बुद्धि विचार जो कुछ होता है ज्ञान का विकास सब ये पड़ता है। जीव का अपना नहीं, जी माने ये शरीर का अपना नहीं, बद्ध जीव माने ये शरीरगत नहीं। जो कुछ भी विचार हमें होते हैं वो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, इस जन्म में कुछ संग होता है और उससे होता है। जैसे इन आँखों में अपनी रोशनी नहीं है, रोशनी ग्रहण करने की कुछ क्षमता है, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश आँखें हमारी नहीं है। ये आँखें ये कैसी हैं? यदि कोई लाइट इसमें रोशनी प्रकाश इसमें प्रतिबिंबित होगी तो वो देखेगी, नहीं तो अपने नाप कुछ नहीं देख सकती। यदि कोई जो हमारी आंखें बड़ी तेज हैं तो क्या समझना चाहिए? वो विचार ठीक है, लेकिन ऐसा ही लोग समझते हैं कि हमारी आंखें बड़ी तेज हैं, मैं बहुत देखता हूँ, किंतु आंखों में कोई शक्ति नहीं है। वो शक्ति सूर्य से रोशनी से प्रतिबिंबित होकर के उसमें आ। इसी तरह से मनुष्य मेधा में, मनुष्य की बुद्धि में जैसे लोगों का संग होता है वैसे ही बुद्धि करीब करीब, तो भी अपने को हम लोग बहुत बुद्धि वाले इत्यादि समझते हैं, विचार वाले हम लोग समझते हैं। जैसे बतलाया गया है वेद इत्यादि हैं, उपनिषद हैं, ये मनुष्य की मेधा की बातें नहीं है। कोई इसको अपौरुषेय माना गया है, और पौरुषेय माने क्या? विचार करके देखते हैं, जैसे कोई बुद्धिमान परम आदमी हो, बुद्धि का जिसका अत्यंत विकास हो, उसके द्वारा वेद इत्यादि लिखे गए, कहते हैं कि यह कभी संभव ही नहीं है। किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के द्वारा वेद का होना संभव नहीं है, इसलिए उसको अपौरुषेय माना। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं, विचार उसमें दी गई हैं, वेद में, परिषद में, पुराणों में, जो किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, इसलिए अपौरुषेय अर्थात भगवत द्वारा वो प्रकाशित है। इसलिए जिन इन चीजों को समझ नहीं सके, वो जैन और बुद्धों ने वेद को कह दिया जैसे ये अपौरुष किसी ने बना नहीं, ये झूठा, साधारण आदमी इसको बना नहीं सकता, और ऐसा बुद्धिमान आदमी देखा जाता नहीं, इसलिए ये प्रमाण। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में ऐसी सब बातें हैं परमार्थ की, इधर की, जो किसी मनुष्य के लिए संभव है। उनके संपर्क में जो व्यक्ति जितना आएगा ना और उसको ग्रहण करेगा, उसको आदमी कहेगा ये परम बुद्धिमान है। मनुष्य की बुद्धिमत्ता किसी में, इसलिए हमारे शास्त्रों में विचार किया, ये जितने भी वेद उपनिषद शास्त्र इत्यादि हैं, उसमें श्रीमद्भागवत का जो ज्ञान है वो सर्वोत्तम है, इसलिए उसके संपर्क में आने वाले की बुद्धि वैसे ही। जो लोग इनके बुद्धि के संपर्क में नहीं आए, वो अपना अपना एक अलग अलग विचार रखते हैं किसी विषय में, किंतु सार्वभौम जो विचार होगा वो विचार होगा उन्हीं लोगों की, जो लोग इन सब शास्त्रों में पढ़े, उनको विचार किया, उनके संग में आए, उपलब्धि की। शंकर जो महादेव, देव महादेव है, वो लोग साधारण जिनका ऐसा संस्कार नहीं, वो क्या इसके विषय में विचार करेंगे? कोई समझ में नहीं आए। कृष्ण के तत्व के संबंध में वो क्या विचार करेंगे? वो लोग सब विचार। शंकर जी का तत्व बहुत सरल है, किंतु बहुत ही जटिल है। समझने वालों के लिए जिनका संस्कार ऐसा है, वो उनके लिए तो सहज है, और जो लोग ऐसे नहीं है, उनका संस्कार ऐसा नहीं है, ऐसे महापुरुषों के साथ में नहीं गए, उनका विचार नहीं सुना, ऐसे शास्त्रों का दर्शन भी नहीं किया, शास्त्रों को पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा जब तक उनका ताला खोलने वाला ना हो, महापुरुष ना हो। इसलिए ये सब विषयों के लिए, इसमें जो पारंगत विचार वाले हैं, तब तो वो उनसे शंकर जी के संबंध में या भगवत तत्व के संबंध में, विशेष करके इस विषय में कुछ हम लोग जान सकते। इसको विचार करने के लिए शंकर जी का आज उनका जन्म तिथि है, या लिंग प्रकाश होने का उनका ये दिन है, सभी लोग शिव चतुर्दशी करते हैं, इसलिए उसके संबंध में दो चार बातें हैं जो शास्त्रों में है। पहले शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व माने सदा शिव, एक तत्व, सदा ही शिव है, कभी भी शिवत्व से वो च्युत नहीं होते, इसलिए उनको सदाशिव कहा गया। सदाशिव एक लोक ही है। सदाशिव का वर्णन बहुत से जगहों में मिलने पर भी बृहत भगवतामृत में जैसा किया गया है, शंकर पार्वती और उनके गण लोग सब समय वहां रहते हैं और सब समय भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। शिव के पास में, निकट में कौन है? नारायण, इसलिए सब समय नारायण का तत्व का कीर्तन करते हैं, अपने परिकरों के साथ उसमें मग्न रहते हैं, वो हैं सदाशिव। वो जगत में आविर्भूत नहीं होते हैं, अपने अंश और कलाओं से केवल आविर्भूत होते हैं पूर्ण रूप, जैसे कि नारायण स्वयं आविर्भूत जगत में नहीं होते हैं, सब समय वैकुंठ में रहते हैं, उनके अंश, कैसे अंश? उनके अंश हुए कर्णाब्जशायी विष्णु प्रकारांतर रूप में, उनके बिंब हैं महाशंकर, उनके अंश हैं कर्णाब्जशायी विष्णु, उनके अंश हैं गर्भदशायी, ये गर्भदशायी इत्यादि से ही ये सब अवतार, सब अवतार इसलिए नारायण ही प्रकारांतर रूप में उस रूप में आए, ये मान लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से सदाशिव का कोई अवतार नहीं है, तब जगत के कल्याण के लिए ये उतरते हैं, आते हैं किस रूप में, कैलाशवासी शंकर के रूप में ही आते हैं। इनको रुद्र कहा जाता है। सदाशिव का वह अंश जो पृथ्वी में अवतरित होकर के भगवान की सेवा के लिए बहुत प्रकार के सेवाओं में से जगत का समुद्धार भी ये भगवान की एक सेवा है, उसके लिए जब अवतरित होते हैं तो उनको महादेव कहते हैं, शंकर कहते हैं, कैलाशवासी शंकर। तो ये कैसे प्रकटित होते हैं? महाविष्णु कर्णाधिशायी विष्णु के
उच्च देशक
ललाट प्रदेश से वो ज्योतिर्लिंग के लिए शंभुलिंग के रूप में वो प्रकाशित होते हैं। वो उनका ध्यान करते हैं सदाशिव का, किस लिए? जगत की सृष्टि के लिए। बस साथ ही साथ में यहाँ से उनका ललाट प्रदेश से शंभु रूप के लिंग के रूप में, लिंग माने ये मत समझना जो कोई पत्थर की मूर्ति या स्टील की मूर्ति या पीतल की मूर्ति, ये सब लिंग माने होता चिन्ह। चिन्ह माने जिस ये पांच प्रकार के पदार्थ जगत में है ना, पांचों में से किसी भी एक के रूप में वो जल के रूप में अम्बुलिंग ना,
वायुलिंग
वायु के रूप में कहाँ, और अम्बुलिंग है बंगाल में, बंगाल में काशीनगर जहाँ है वहां पर, जहाँ पर महाप्रभु गए थे अम्बुलिंग में स्नान किया था, और बर्फ के बने हुए वहां से अमरनाथ में, वहां कोई लिंग कोई मूर्ति नहीं है, वो आकाश मार्ग में ऐसे ही देख लेते हैं, वो अम्बुलिंग वो है
अमरनाथ,
अमरनाथ वो
नामी।
इसी तरह से पशुपतनाथी वो मूर्ति उनकी है, मृण में जैसा उनको वो प्रस्तरमयी है। तो इस तरह से पानी से जल से, पानी से वायु से आकाश से, आकाश माने अमरनाथ, आकाश से और किसे, पानी से अम्बुलिंग हो गए, अग्नि से ज्योतिर्लिंग, अग्नि से ज्योतिर्लिंग हुआ, और क्या रहा बाकी हो गया ना, मिट्टी वाला एक निर्मल हो गया, वही वो मिलना है। तो इस तरह से पांच प्रकार के लिंग होते, और एक होता है मन के द्वारा, मानसिक मूर्ति भी होती है, मन ही मन में वो उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हैं, तो मन से भी होती है। और सदाशिव का जो असल रूप है वो है शुद्ध चिन्मय रूप। तो यहाँ से शंभुलिंग के यहाँ से प्रकटित होता है, और प्रकृति में प्रतिफलित होकर के उसको क्षुब्ध करके जगत की सृष्टि करता है। वही उन्हीं का एक नाम रुद्र है, वही रुद्र कैलाशवासी। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन? जगत की सृष्टि के लिए भगवान जब किसी योग्य जीव में, किसी कल्प में अधिष्ठित होते हैं, अपनी शक्ति का संचार करते हैं, वही रुद्र। तो उनको गुणावतार शंकर कहते हैं, तमो गुण के वो हैं अधिष्ठात्री के। जब भगवान अपने माया के तामसिक गुण को किसी योग्य जीव में जगत का संहार इत्यादि कार्य के लिए, सृष्टि इत्यादि के लिए प्रकाशित करते हैं, उसमें
तमोगुण कर
प्रवेश कराते हैं, इसको आवेश अवतार, आवेश कैसा, गुण का, इसलिए इसको गुणावतार। किंतु जिस किसी कल्प में ऐसा कोई योग्य जीव ही नहीं मिलता जिसमें इतने उच्च तत्व को प्रकाशित किया जाए, ब्रह्मा के लिए योग्य जीव बहुत से मिल जाएंगे, इंद्र के लिए बहुत से योग्य जीव मिलते हैं, किंतु कभी कभी इंद्र भी ऐसा योग्य नहीं मिलता है तो भगवान विष्णु ही इंद्र बन जाते हैं। इसलिए उस इंद्र में और इस विष्णु में कोई अंतर नहीं। आदमी इसका सामंजस्य नहीं कर पाता, इसलिए कौन से इंद्र विष्णु है कौन से क्या है वो समझ नहीं पाता, गड़बड़ हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान आदमी भी साधारण ये जो इंद्र हैं या विष्णु इंद्र हैं उनमें भेद नहीं कर पाने के कारण गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए बहुत दुरूह तत्व है। तो इसलिए जिस कल्प में कोई योग्य ब्रह्मा से भी योग्य व्यक्ति आदमी होता है, 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म के अच्छी तरह से नियमों का पालन करने पर ब्रह्मा हुआ जाएगा। और ब्रह्मा 100 जन्मों में वैसे योग्य होने पर तब शिवत्व उसमें आता है, उसमें भगवान अपनी शक्ति का संचरित करके, और नहीं मिलने पर भगवान स्वयं विष्णु ही, कौन विष्णु, गर्भदशा वो स्वयं शंकर का काम करते हैं खुद अपने आप। उस समय शंकर और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं होता।
उस समय शिव को क्या कहा जाएगा,
सदाशिव तत्व कहा जाएगा, विष्णु तत्व कहा जाएगा। किंतु फिर भी कृष्ण और वो विष्णु तत्वतः एक होने पर भी शक्ति और रस का तारतम्य सब समय वर्तमान रहेगा, ये सब समय ठीक रहेगा। तत्वतः एक होने पर भी रसवत या शक्ति के तारतम्य से दोनों एक नहीं हैं। जैसे कृष्ण और द्वारकाधीशी एक नहीं है, कृष्ण और राम एक होते हैं भी एक नहीं है, उनमें तात्पर्य विद्यमान है, ऐसे ही उनमें भी। इसलिए बतलाया गया यदि किसी योग्य जीव में भगवान आवेश अपनी शक्ति का आवेश कराते हैं तो वो तो गुणावतार हुआ, उस गुणावतार में भगवान का ही काम शक्ति काम कर रही है तो वो विष्णु ही है, विष्णु जैसे ही मान्य है सब, उनको साधारण नहीं देखना चाहिए, जीव तत्व तो नहीं मानना चाहिए उनको, नहीं तो अपराध हो जाएगा। इसलिए शिव और विष्णु के नाम महिमा इत्यादि में अभिन्न देखने के लिए कहा गया है, अभेद देखो, भिन्न मत देखो, ऐ आंख बंद कर मत रखो, आंख खोल करके बैठो, समझने की चेष्टा करो, हिंदी में बोल रहे हैं मैं तो कुछ सब समय सोता रहे। ये मिर्च होता है ना लाल, हाँ पीस करके थोड़ा सा यहाँ पर लग ऐसे कर, आंसू भी निकले कहीं वाह बहुत प्रेम हो रहा है और देखिए मुझे होता है ना तो हम वो एक होता है ना पत्ती तो थोड़ा सा लाइन से ये हो जाता, मैं खोज करके ढूंढ करके ले आया थोड़ा सा लगा। अच्छा तो
अभिन्न तत्व,
अभिन्न तत्व है किंतु अभिन्न होने पर भी तारतम्य रहेगा। ये गुणावतार उनको कहते हैं, भगवान के गुण का अवतार है कौन, रुद्र अर्थात ये शंकर जो यहाँ वाले हैं कैलाश वाले। किंतु हो सकता है जब भी विष्णु के रूप में आए तब तो दोनों में अभिन्न, किंतु सब समय एक चीज ख्याल रखना चाहिए, तत्वतः एक होने पर भी तभी है दूध से बनी है, बना है दूध दही में कुछ अंतर सा दिखता है स्थूल रूप में, किंतु घी उसमें में भी है उसमें भी है। जब घी की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे क्या एक ही तत्व है, किंतु ऊपर से वो खट्टा और मीठा का प्रश्न है, दूध में जो गुण है दही में नहीं है, किंतु फिर भी वो दूध ही है, दूध से अतिरिक्त चीज नहीं है, विकृत दूध है, दही को कभी भी दूध नहीं कह सकते, किंतु उसका उत्पादन दूध के अतिरिक्त दूसरे वस्तु से नहीं हुआ। ऐसे ही सदाशिव तत्व विष्णु तत्व विष्णु है, किंतु अपने तमगुण को उसमें प्रकाशित करते हैं तब वो दही के रूप में बदल जाते हैं। भीतर से तो एक चीज है अर्थात घी है, किंतु ऊपर से उसका स्वरूप बदल गया।
अब दही दूध नहीं है, कभी नहीं होगा।
अन्न उसको दूध कहेंगे, दही को दूध को भी दही नहीं कहेंगे और दही को भी दूध नहीं कहेंगे। किंतु दूध के अतिरिक्त तो तत्वतः वो कुछ दूसरा है नहीं। उसी प्रकार से जो शिव में जो उनका आवेश हुआ है विष्णु का, वो शिव तत्व होने पर भी विकृत है। इसलिए दधि विशेष विकार
क्षीरम
यथा दधि विकार संयोग उसे ये बना हुआ है। ऐसे ही शिव विष्णु तत्व ही है ऐसा मान लेना चाहिए, किंतु विष्णु तत्व नहीं है। जगत में है होगा और नहीं तो नहीं होगा, दोनों में से कोई, दोनों नहीं हो सकता। ये स्त्री भी है पुरुष भी है, तुम झूठ भी बोलता है सच भी बोलता है, ऐसा नहीं होगा। किंतु परजगत में ऐसा संभव है, इस जगत जैसा नहीं। इसलिए अत्यंत व्यापार को जगत के लोग ने इस तरह से शंकर का तत्व तो समझना बड़ा भारी कठिन है। तभी शास्त्रों में महात्मा लोग इन चीजों को समझाने की चेष्टा करते। इसलिए साधारण रूप में शंकर को उनका आवेश होने से जो शंकर बने हैं इसलिए उनको दास समझो, दास शंकर दास शिव। और जो स्वयं विष्णु तत्व हैं वो प्रभु से शंकर। इसलिए कल्पों कल्प विशेष विशेष कल्पों में ये सब चीजें होती हैं। साधारण रूप में जीव में ही उनका आवेश होने के कारण वो शंकर जी होते हैं जीव तत्व के रूप में, और विशेष विशेष कल्पों में स्वयं विष्णु ही आकर के और ऐसा देगा। किंतु कौन से कौन है ये महापुरुष व्यास जैसे व्यक्ति ये ठीक कर सकते हैं, साधारण आदमी ठीक नहीं कर सकता। किंतु व्यास के बात को मानने वाले लोग, उनकी आलोचना करने वाले, आलोचना मैंने उनको मानने वाले लोग उनके कथाओं के अनुसार में उनको समझ जाते हैं ये कौन कौन कौन। शास्त्रों में बहुत जगह वेदों में उपनिषद में रुद्रम भजामहे इत्यादि सब आता है। वेदों में बहुत जगहों में रुद्र का शिव का इत्यादि ये सब मिलता है। वहां पर ऐसे देखने से ऐसा मालूम ये स्वतंत्र शिव की ही बातें कही गई है। इसीलिए व्यास जी ने देखा जैसे ये साधारण आदमी समझ नहीं सकेंगे, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत में उनकी अवतारणा करके ये बतलाया जैसे कौन सा कैसे तैयार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवत में या तुलसी के रामायण में सबके प्रारंभ में ही शंकर जी अवतरित हुए। कब अवतरित हुए? अनादि काल। उनका देश काल कोई कहीं भी नहीं निकलता कि कब वो प्रकट हुए शंकर। इसीलिए स्वयंभू लिंग उनको माना जाता है, जैसे स्वयंभू ब्रह्मा है ना, तो लिंग में भी स्वयंभू लिंग माना जाता है। उनका आदि अंत इत्यादि निर्धारित नहीं किया गया, तो भी उपनिषदों में वेदों में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण जब राक्षसस्थली में प्रकट हुए तो उनके वाम अंग से श्रीमती राधिका और दाहिना अंग से वही गोपेश्वर महादेव एक ही जगह दोनों हैं, एक ही जगह, और वहीं पर उनका प्रकाश वो प्रकाश हुआ। तो कभी कभी ब्रह्मा जी खूब किसी कारण से बड़े क्षुब्ध हो गए, बहुत क्षुब्ध, तो क्रोध के रूप में शंकर जी प्रकट हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी से उनका प्रकट हो गया। तो ये सब है केवल जैसे काठ में अग्नि है किंतु अग्नि सब समय है, कभी बाहर हो जाती है वो दिखती है, ऐसे ही शंकर तत्व तो सब समय है किंतु कभी कभी उनकी ऐसी उनका प्रकाश या आविर्भूत होना देखा जाए, किंतु शंकर तत्व तो सब समय है। तो दक्ष प्रजापति का नाम सुना होगा, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन मिलता है। दक्ष, दक्ष माने क्या, एक ओम था बोल रहा परिक्रमा वाली सब। अरे कौन बातचीत कौन कर रही है, एक आदमी उसको मना कर दो। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा प्रसंग आता है कि दक्ष प्रजापति हुए सतयुग के प्रारंभ, इनके मूल कौन है, मनु और सतरूपा, उनके बाद में ये पीछे से आए दक्ष प्रजापति। उसके पहले भगवान की इच्छा ये जगत की सृष्टि हो, जगत की सृष्टि हुई, सत एव सम्म इदम अग्रा आसीत, सत एव सम्म इदम अग्र आसीत, प्रभु एकमात्र थे, अहम एव असम
अहम भूसम।
गीता के भागवत की चतुर्श्लोकी में अहम एव असम एव अग्रे
नन्नत परम जत सत असत परम,
सत असत कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था असत भी नहीं था, सत माने क्या, इसमें जो जीव तत्व है ये भी नहीं था, असत माने ये जो सृष्टि जो दिखाई पड़ती है ऊपर से ये भी कुछ नहीं था उस समय में। किंतु जो लोक है ना वो चिन्मय लोक तो वो सब है, किंतु ये सब नहीं था। अर्थात उस समय प्रलय के बाद की स्थिति, कितनी बार कोटि कोटि बार इसके पहले प्रलय हो चुका है, हो सकता है तो इसके बाद में उन्होंने देखा जिसे कुछ ने सत असत नहीं, तो इसलिए सृष्टि करने के लिए सोचा। तो उस समय सृष्टि कर भगवान ने तब सोचा जी एको बहुत श्याम स अकामयत, उन्होंने कामना की, स ऐक्षत, ऐक्षत माने नहीं इच्छा की, अभिलाषा की, और उसका स्थूल रूप है देखना। इच्छा को तो देखा नहीं जाता है, जब हम कहते हैं कि हम देखेंगे, हमको देखना चाहिए, पहले मन में आएगा तो फिर आंख खोल करके देखते हैं। उसी तरह से ऐक्षत माने उन्होंने अभिलाषा की कि ये जगत हो, तब उन्होंने क्या किया, विचार करने के बाद उसे एक तेज निकला, उसी का नाम शंभुलिंग हुआ। तो यही स अकामयत, उन्होंने कामया, तब ये होकर के फिर प्रकृति पुरुष के संयोग से और ब्रह्मा के इसमें ये जगत की सृष्टि हुई। तो उसी को कह रहे हैं कि जैसे वनु के बाद में वंश परंपरा में ये दक्ष, उस समय में पुरुष लोग तो थे, स्त्री भी थी, किंतु सृष्टि ठीक से चल नहीं रही थी। इसमें हानि क्या थी, जो जीव पहले वाले जीव थे और उनके कर्म फल भोगने हैं, तो सृष्टि नहीं होगी तो वो आकर के फिर जगत में अपने भोगों को भोग करके फिर वो भगवान का भजन करके जाएंगे कैसे, इसलिए सृष्टि की आवश्यकता है कर्म फल भोग करने के लिए, इसलिए स्थूल सृष्टि की आवश्यकता हुई। तो इसलिए स अकामयत, उन्होंने कामना की, जगत तो हो गया किंतु अब ब्रह्माचारी विचार करेंगे कैसे इस जगत की वृद्धि हो, तो उसके लिए दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए अजोनिजा सृष्टि के रूप में। दक्ष माने इस काम में बहुत तेज हैं, चतुर हैं, दक्ष माने चतुर सृष्टि कार्य में, वो इसी को बुद्धिमत्ता समझते हैं कि संसार कैसे बढ़े, एक से कैसे हजारों के रूप में बढ़े, इस विषय में बड़े चतुर है सृष्टि के विषय में। उनकी कितनी लड़कियां हुई, कितने लड़के हुए, मन से पैदा किया, शरीर से पैदा किया, और फिर उसे जोड़े बना करके संसार में पुरुष स्त्री कुत्ते गधे जितनी जोनियां की हैं एकदम विस्तार करना, इस विषय में जो बहुत तेज हैं उनको कहते हैं दक्ष प्रजा, प्रजाओं के विषय में जो अत्यंत दक्ष हैं उनको दक्ष प्रजापति। वो समझते हैं कि जो ऐसा नहीं कर सकता है वो चतुर ही नहीं है, मूर्ख है। इसीलिए सनक सनंदन सनातन इत्यादि को प्रकट करके भी उनको कहा जाए ये योग्य नहीं है। नारद जी को उनकी इसे गले माने कंठ से स्वर से, इसलिए नारद जी स्वर के संगीत के कितने बड़े विशेषज्ञ हैं। तो देखा जी ये तो सब काम करता नहीं है, कहने पर भी नहीं करता, तो उनको अभी संपात इत्यादि दिया। किंतु दक्ष को अपना सबसे चतुर बुद्धिमान बेटा कह करके उसका नाम ही रख दिया दक्ष। दक्ष जी ने कहा हमारी इतनी चतुरता होनी चाहिए, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग जो इस संसार से आंख बंद किए हुए हैं उनको भी पकड़ करके ले आकर के उनको संसार में आबद्ध करना हमारी दक्षता है। इसलिए शंकर जैसे वितराग व्यक्ति को भी उनको लाया। शंकर जी वितराग थे, उनको इसे कोई आवश्यकता नहीं है, प्रजा इत्यादि से संबंध ही नहीं है। वो तो ध्यान में बैठेंगे तो कितने कल्पना जने निकल जाएंगे, ब्रह्मा भी कितने पार हो गए उनको पता ही नहीं है।
हमको तो इतने बड़े हैं आरी नहीं छोड़ आएंगे कैसे सबके साथ हैं। शंकर तो कतो उच्च तत्व आरी नहीं के पूछने करते,
यही तो ऐसा ही करते हैं। वो बद्ध जीव जो है ना महापुरुषों को की टांग खींच करके लाने की चेष्टा, वो समझते हैं कि अब हमने उनको वशीभूत कर दिया, अपने बद्ध धारणा में उनको लाने की चेष्टा करते हैं और विचार करते हैं कि हमारी धारणा के अनुसार में ये महापुरुष। वो तो होते नहीं, वो उनको विवाह कराया दक्ष प्रजा को, किंतु उन्होंने विवाह कर लिया। वो कहाँ ऊंचे स्थान पर हैं, ये बहुत उन्नत स्थान पर हैं दक्ष, ये शंकर जी विवाह करके भी विवाह मिल गए। ये सती जी उनकी क्या लगती हैं, उनकी पत्नी लगती है न बहन लगती है न भाई लगते हैं, कि क्या उनका क्या संबंध है कि माता लगती है न क्या। राधा जी कृष्ण की क्या लगती हैं ये कौन बतला सकता है, कोई उनसे साथ में क्या रिलेशन है। तत्व की दृष्टि से विचार करो दोनों एक ही है, कोई कोई संबंध नहीं। स्त्री पुरुष का भाव कल्पना करना ये बेकार है, हाँ कोई है ही नहीं। उसी तरह से तत्व के विचार से सती और शंकर का कोई उस तरह का इस पत्नी पत्नी का कोई भाव नहीं है, वो तो भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपनी शक्ति को एक रूप देकर के सती के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। उसने समझा जी हमारी बेटी है ये सती, सती उनकी बेटी थी। ऊपर से स्थूल रूप से ऐसा एक कहा जाता है, किंतु यथातथ में वो सब तत्व तो बहुत सुंदर। इसलिए शंकर जी को तो अपनी वो लाग लख में ले लिया, जैसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दिया, ये हमसे छोटा हमारा जमाई है। किंतु शंकर जी उनके जमाई बन गए, उनको जमाई इत्यादि संबंधों से क्या संबंध है। ये लोग महापुरुष हैं, इस सबसे अतीत हैं, सदाशिव तत्व हैं, इनसे इसे कोई मतलब नहीं। अब एक दिन देवताओं की सभा में शंकर जी ब्रह्मा जी इत्यादि सब बैठे थे, विष्णु नहीं थे, या ब्रह्मा जी भी नहीं,
नहीं ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु की नहीं,
विष्णु तो वो सब बड़ी भारी सभा बैठी थी। ये सब तत्व ऐसा मत स्थूल मत समझना, स्थूल के माध्यम से चिन्मयता की तरफ में दृष्टि रखना चाहिए। शास्त्र का यही तात्पर्य है, स्थूल चीज से जीवों को किसी प्रकार से उठाकर चिन्मय तत्व की तरफ में स्थित करते। किंतु हम स्थूल लोग उन चिन्मय तत्वों को भी स्थूल के रूप में समझते हैं और स्थूल रूप में विचार करते हैं और बाध्य भी हैं, चिन्मय की तरफ में नहीं बढ़ते जाते। तो ये भागवत की में वर्णित चीजें जो हैं वो तो वो चिन्मय तत्व है। तो वो सभा में सभी लोग बैठे थे और दक्ष प्रति सूर्य के समान चलता हुआ एकदम तेजस्वी व्यक्ति और वहां पर उपस्थित, उसको तेज को देकर के सब देवता लोग खड़े हो गए, प्रजापति लोग सब खड़े हो गए, केवल ब्रह्मा जी नहीं उठे, शंकर जी भी नहीं उठे, अभिवादन नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को तो उसने प्रणाम किया, मूल प्रजापति ब्रह्मा ही है, इसलिए अपने पिता के रूप में, पितामह के रूप में उनको प्रणाम किया और गरगर करता हुआ आसन पर बैठते हुए क्रोधित कुछ हो गया। बंदर जैसा मुख, स्मशान भूमि में विचरण करने वाला, अरे तुमको तो मैंने अंगीकार करके तुम्हारा कल्याण कर देने, तो तुमको कोई कौड़ी में नहीं पूछता, और तुम बंदर की भांति देखता है और तुम उठ करके खड़ा नहीं हुआ, हमारा आदर नहीं कर सका, तू हमारा जमाई है, हमारा जमाई तू नहीं है, नहीं तो तू हमारा तो सम्मान करता, शंकर जी को जमाई समझ लिया,